ओम शांति। ये मेरा अहो सौभाग्य है कि आज आपके सामने मुझे ये अवसर प्रदान किया गया इस सत्य नारायण की सच्ची कथा, इस विषय पर हम सत्यता का बोध, जो कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें कराया है, आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए अधिक बातों के विस्तार में न जाते हुए इस विषय के बारे में संस्था के वरिष्ठ भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी के दो शब्दों के उपरांत हम सत्यनारायण की सच्ची कथा का श्रवण करेंगे। भारतीय संस्कृति में व्रतों, कथाओं, पर्वों और तीर्थों का विशेष महत्व है। मनुष्य जीवन को दिव्य गुण संपन्न तथा पवित्र और निर्विकारी बनाकर कर जीवन में उमंग उत्साह भरना ही इन सांस्कृतिक गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य है। समय के निश्चित क्रम में आने वाले इन पर्वों, कथाओं और व्रतों के पीछे एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ होता है। काल की लंबी अवधि की धूल से वे गहन आध्यात्मिक रहस्य धूमिल तो हो ही गए हैं, पर पूरी तरह मिटे नहीं। सत्यनारायण की कथा भी भारत की प्रसिद्ध कथाओं में से एक सुप्रसिद्ध कथा है। इन कथाओं का वास्तविक सार इस सत्य से संबंध है कि स्वयं भगवान ज्ञान देकर नर से श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी का पद प्रदान करते हैं। इस अर्थ में परमपिता परमात्मा शिव द्वारा कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम युग पर सुनाई जाने वाली सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञान कथा ही सच्ची सत्यनारायण की कथा है, और मन की कुवृत्तियों को नियंत्रण करना ही सच्चे अर्थों में व्रत है। अभी महाविनाश भी अपनी पूर्ण तैयारियों सहित सामने खड़ा है। अवतरित भगवान को पहचानने में लापरवाही और प्रमाद करने वाली आत्माओं का धन धान्य तृणश्व तो हो ही जाना है। पापों के बोझों से इस कलयुगी संसार का बेड़ा भी डूब जाना है। दूसरी तरफ ईश्वरीय मत पर चलने वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार, 21 जन्मों की अविनाशी खुशी, आमोद प्रमोद तथा कमल मुख कमल नेत्र सहित नारायण पद मिलना ही है। सुधी श्रवकों से शुभ आकांक्षा है कि ये जो वार्तालाप आप सुन रहे हैं, प्रचलित कथा और वास्तविक कथा का जो सुंदर तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है, उसे केवल श्रवण ही नहीं करें बल्कि स्मरण भी करें और फिर उस पर मनन भी करें। इसे श्रवण कर श्रवक इनकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो और वे भगवान शिव द्वारा वैकुंठ में अमर पद के अधिकारी अवश्य बने, ऐसी हमारी शुभ भावनाएं हैं, शुभ आशाएं हैं आपके प्रति। ओम शांति। सत्यनारायण की व्रत कथा। भारत में अनेक लोग सत्यनारायण की व्रत कथा करते तथा सुनते भी हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में लिखा है कि सत्यनारायण व्रत दुख और शोक को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को देने वाला तथा सब जगह विजय प्राप्त करने वाला है। इस व्रत और कथा के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और इस लोक में सुख से जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मुक्ति की तथा वैकुंठ में देव पद की प्राप्ति कर लेता है। इसको पृथ्वी पर जब मनुष्य करेंगे तब पृथ्वी से दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस कथा में सभी मनोरथों के सिद्ध होने का तथा सभी इच्छाओं के पूर्ण होने की बात लिखी हुई है। क्या इसमें सत्य के परिचय का, श्री नारायण की जीवन कहानी का या उत्तम व्रत का वर्णन है? ऊपर इस व्रत और कथा का जो इतना बड़ा महात्म्य लिखा है उसको पढ़कर तो हरेक मनुष्य चाहेगा कि वह भी व्रत करे तथा कथा सुने, क्योंकि सुख और शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति, विजय और सौभाग्य या धन धान्य की प्राप्ति तो हरेक कोई चाहता है ना। पहली बात, यह व्रत कथा स्कंद पुराणों के रेवा खंड के अंतिम 5 अध्यायों में है, परंतु वहां कथा न देकर कर केवल महात्म का ही उल्लेख है। बताया गया है कि यह कथा नैमिष्य पुराण तथा सूत जी, जो कि व्यास जी के शिष्य थे, इन्होंने शौनक आदि 28,000 ऋषियों को सुनाई। इसमें लिखा हुआ है कि यह कथा भगवान ने नारद को तब सुनाई जब नारद ने मृत्यु लोग में देखा दुख, बहुत सारा दुख देख कर उसकी निवृत्ति के लिए नारायण जी ने उनसे उपाय पूछा, श्री नारायण जी से। तो कई वर्षों का हुए है जो गीता प्रेस है गोरखपुर में, कल्याण में, स्कंद पुराण का हिंदी अनुवाद जो छापा गया था उसमें उन्होंने भी यह बात स्वीकार किया है कि मूल पोथी में ऐसी कोई कथा नहीं है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि यह व्रत कथा हर कोई चाहेगा कि विजय भी हो, धन धान्य भी हो, हर चीज की प्राप्ति हो, परंतु जब मनुष्य प्रचलित सत्यनारायण व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है तो यह सोच कर आश्चर्य होता है कि इसमें न तो श्री नारायण की कोई आत्मकथा माना बायोग्राफी है, न सत्य स्वरूप परमात्मा का कोई परिचय दिया गया है और न ही किसी ऐसे व्रत की कोई व्याख्या है कि जिसके के बारे में मन जान जाए कि इस व्रत को करने से उपयुक्त उत्तम प्राप्ति हो सकती है, बल्कि इसमें तो केवल व्रत की ही कथा लिखी हुई है। अर्थात केवल यही लिखा है कि अमुक अमुक ने इस व्रत को किया तो उसे धन धान्य मुक्ति और वैकुंठ पद की प्राप्ति हुई, और अमुक अमुक ने इस मत को न करने का संकल्प भी नहीं किया या व्रत का प्रसाद ही नहीं लिया तो वे विपत्तियों में दुखी होकर कर पड़े। उदाहरण के तौर पर इसमें सबसे पहली कथा तो यही की गई है, यह बताई गई है कि काशीपुरी में शतानंद नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था जो कि भीख मांगने पर भी भूख से पीड़ित रहता था। भगवान उसके सम्मुख एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने उसे सत्यनारायण व्रत करने के लिए कहा। उस व्रत को करने से उसे धन संपत्ति तथा सुख का लाभ हुआ। वह उसे हर मास करने लगा और अंत में उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा लकड़ी बेचने वाले निर्धन भील की है। वह भी इस व्रत को करने से निर्धनता, दुख तथा शोक से छूट गया और अंत में वैकुंठ में देव पद को प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इन्होंने कौन सा व्रत किया, कैसे किया और कौन सी कथा सुनी। क्या कथा में वर्णित व्रत व्रत को करने से इतनी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है? अब सोचने की बात है कि आज जो सत्यनारायण व्रत की कथा प्रचलित रीति है उसके अनुसार व्रत करने या व्रत कथा सुनने से क्या इतनी उच्च प्राप्ति हो सकती है? व्रत की प्रचलित रीति तो यही है कि लोग प्रातः निराहार रहते हैं, पुष्प हाथ में लेकर कर सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, उसकी विधि पूर्वक स्तुति करते हैं और प्रसाद लेते तथा मीठा भोजन करते हैं। स्पष्ट है कि वास्तव में यह व्रत जो वह व्रत है जो था जिसका महात्म इतना बड़ा इस लेख के शुरू में हम सुन कर कर आए हैं, इस प्रचलित व्रत से भिन्न और उच्च कोटि का व्रत रहा होगा। वरना यदि कुछ घंटों के लिए निराहार रहने रूप से व्रत के करने से या एक दिन सवाया भोजन लेकर मीठा ही मीठा खाकर मौज मनाने से संपूर्ण सुखों अथवा मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सकती होती, तो इस जीवन में भी मनुष्य दरिद्रता और दुख से छूटकर संपत्ति और सुख प्राप्त कर सका होता। इतना सहज अत्यंत सहज युक्ति को अपनाने से तो कोई भी नहीं चूकता। यहां तक कि नास्तिक कम्युनिटीज लोग भी क्रांति और दरिता हसुआ की बात छोड़कर कर सक्रांति इस पर इस व्रत को करना ही सर्वोत्तम मानते। और आज जबकि देश में दर्दनाक दरिद्रता है और लाखों लोग भूख से कराह रहे हैं, तो सरकार भी इसी व्रत को करती और कराती। परंतु इस कथित व्रत में यह विशेषता ही नहीं है कि देश में सुख संपत्ति हो जाए और मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो। अब इस व्रत कथा में जो मुख्य कथा है उस पर विचार करते हैं। आप भी यही देखेंगे कि उसमें सत्य स्वरूप परमात्मा का परिचय या श्री नारायण की आत्मकथा का सच्चे व्रत का कहीं भी उल्लेख नहीं है। कथा में वर्णित वृत्तांत कहां तक संभव है और उनकी वास्तविक भाव क्या है? सत्य नारायण व्रत कथा में जो सबसे बड़ी कथा लिखी हुई है वह यही है कि एक वैश्य माना व्यापारी ने यह संकल्प किया कि यदि उसके संतान होंगी तो वह यह व्रत को अवश्य करेंगे। परंतु जब उसे एक कन्या उत्पन्न हुई तो उसने अपना वचन टाल लिया और कहा कि इसके विवाह के अवसर पर व्रत करूंगा। परंतु उस अवसर पर भी व्रत करना भूल गया। इसके परिणाम स्वरूप सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसे श्राप दे दिया कि उस पर दुख आए। इधर राजा की चोरी हो गई और चोरों ने राजा के दूतों को अपने पीछे भागता हुआ आते देखकर कर जहां वैश्य और उसका जमाता यानी कि दामाद बैठे हुए थे वहां धन को छिपा कर भाग गए। तो राजा के दूत वैश्य और उसके जमातों को चोर मानकर कर पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया। उधर वैश्य की स्त्री ने पति के लौटने के मनोरथ को लेकर कर सत्यनारायण व्रत किया और भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि इन दोनों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। जब राजा द्वारा मुक्त होकर कर दोनों वैश्य उसका जमा था अपने बेड़े पर अपने घर की ओर अपने शहर की ओर लौट रहे थे तो सत्यनारायण ने पूछा तट पर बैठकर कर कि वैश्य तुम्हारे बेड़े में क्या है? वैश्य बोला, क्या कुछ लेने का विचार है? इसमें तो केवल लता पत्र आदि है, यानी सूखे हुए पत्ते, लताएं, पत्र इत्यादि है। तब साधु के वेश में सत्यनारायण बोले, तथास्तु, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्य के बेड़े में सब धन, सोना आदि, लता पत्र आदि ही बन गए। परंतु जब वैश्य ने लौटे कर उस साधु के वेशधारी नारायण जी से दुख प्रकट किया, तो उसने कहा, तुम मेरी पूजा नहीं करते हो और व्रत नहीं करते हो, इसीलिए मेरी इच्छा से ही तुम्हें यह सब दुख होता है। वैश्य बोला, आपकी माया से ही प्रभु, आपकी माया से ही मोहित होकर कर व्रत करना मैं भूल गया था। जब वैश्य ने व्रत करने का आश्वासन दिया नारायण जी को, तब भगवान की प्रसन्नता के फल स्वरूप लता पत्र आदि के स्थान पर पहले की तरह सोना, चांदी, धन इत्यादि प्रकट हो गया। आगे लिखा है, आखिर वैश्य और उसका जमाता अपने नगर के तट तक आकर कर पहुंचे और बेड़े को तट से लगाकर उन्होंने नगर की भूमि पर पैर पग धरा। वैश्य की पुत्री, जो कि सत्यनारायण का व्रत कर रही थी, अपने पिता और पति के बेड़े की आने की सूचना को पाकर कर सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर बेड़े की ओर दौड़ पड़ी, चल पड़ी। प्रसाद न लेने का परिणाम यह हुआ कि उसका पति अदृश्य हो गया और बेड़ा डूबकर सागर तल में विलीन हो गया। परंतु जब वह दुखी होकर कर रोने लगी और उसके पिता वैश्य ने यह संकल्प किया कि उसका जमाता आ जाए तो वह सत्यनारायण का व्रत करेगा, तब आकाशवाणी हुई, कलावती माने की जो वैश्य की पुत्री थी, प्रसाद छोड़कर कर आइए। वह जाकर कर प्रसाद खा आवे तो उसका पति लौट आएगा। वह गई और जब प्रसाद खाकर कर लौट आई तो उसका पति प्रकट हो गया और डूबा हुआ बेड़ा भी फिर से तैर कर आया। ऐसे ही कथा एक राजा तुंगभद्र की है, जिसने सत्यनारायण के व्रत का तथा कथा का निरादर करने से दुख पाया और बाद में कथा का व्रत आदि करने से वापस सुख पाया। कलावती की उपरोक्त कथा पर विवेक युक्त रीति से विचार करने पर आप मानेंगे कि कथा में ये जो लिखा हुआ है, धन, सोना इत्यादि सब लता पत्र बन गए और फिर सत्यनारायण जी के प्रसन्न होने पर वे पुनः सोने और चांदी के रूप में परिवर्तन हो गए, वह साधारण अथवा अक्षरार्थ में असामान्य ही लगता है। इसी प्रकार सत्यनारायण जी के रुष्ट होने के कारण कलावती के पति के अदृश्य होने, फिर बेड़े के डूब कर समुद्र तल में विलीन होने और फिर सत्यनारायण जी के प्रसन्न होने पर बेड़े के तर जाने तथा कलावती के पति का प्रकट हो जाने पर की जो बात है, ये भी वाचार्थ में असंभव ही प्रतीत होती है। यो कोई भी व्यक्ति भक्ति की लहर में बहकर कर चाहे हर एक बात को ठीक मान ले, परंतु विवेक और ज्ञान की कसौटी पर कसने से तो ये वृत्तांत एक भी भक्ति प्रधान मानव मन की विचारधारा ही मालूम होती है। वास्तव में तो सत्य स्वरूप परमात्मा का तथा श्री नारायण का बहुत बड़ा महात्म्य है और व्रत भी उत्तम फल देने वाला है, परंतु लोगों ने वास्तविक कथा के भाव को इस ढंग से वर्णित करने के रख दिया है कि सारी बात ही बदल गई है। इसके अतिरिक्त कथा में ये जो लिखा है, भगवान मैं आपकी माया से मोहित होकर कर उस व्रत को करना भूल गया था। यहाँ की भगवान ने रुष्ट होकर कर श्राप दिया और भगवान ने कहा मेरी इच्छा से ही तुम पर दुख आता है, मेरी इच्छा से ही तुम पर दुख आता है आदि आदि। वास्तव में यह सब उल्लेख भगवान श्री नारायण के स्वरूप एक भी स्वभाव के विरुद्ध है। कोई भी बात श्री नारायण जी के स्वभाव का जो स्वरूप है बिल्कुल विरुद्ध है। भगवान तो सदा आनंद स्वरूप और सर्वहितकारी है, वह कभी भी किसी को श्राप और दुख नहीं देता, वह तो सुख शांति के दाता और कल्याणकारी है। दुखी तो मनुष्य अपने ही बुरे कर्मों के कारण होता है, पुनश्च भगवान तो मायातीत है, उन्हें माया कदापि लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती। अतः यह कहना कि भगवान की माया से हम मोहित होते हैं बिल्कुल अनर्थकारी है, अनर्थकारी है। इसके अतिरिक्त कथा में दंडी साधु के रूप में भगवान का आना और वैश्य को श्राप देकर का नदी के तट पर बैठ जाना आदि आदि ऐसी भी कुछ ऐसा उल्लेख है जो कि भगवान के स्वरूप और अवतरण की रीति नीति आदि के विरुद्ध है। और भगवान वास्तव में भगवान के महात्म को बढ़ाने वाला नहीं है। भगवान का जन्म और उनके कर्तव्य तो दिव्य है और दिव्यता का अर्थ नहीं है कि वह इस प्रकार का दंडी साधु रूप धारण कर खम का एक आदमी के पीछे पड़कर उसे श्राप देते फिरे, नदी के तट पर जाकर के बैठ जाते हैं और फिर उनके आने तथा दुख प्रकट करने पर कहते हैं कि मेरी इच्छा से ही तुम्हें दुख हुआ है क्योंकि तुमने मेरी पूजा नहीं की है, नहीं करते हो। दूसरी बात, ये कथा के स्वयं इस व्रत कथा के आरंभ में ही लिखा हुआ है, गौर करने योग्य बात है कि जो मनुष्य दयावान निष्पाप और निर्विरोधी है वह नारायण के समान होता है। तब भला बैर या रुष्ट भाव से दुख पहुंचाना नारायण का हक कैसे हो सकता है। और तीसरी बात, इस विषय में लेखक की पुस्तिका परमात्मा का अवतरण कब और कैसे ये अवश्य पढ़े। आगे वास्तविक व्रत का भाव इस पर विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करेंगे आगे। अतः उपयुक्त रीति से विचार करने पर इस निर्णय पर पहुंचना स्वाभाविक है कि वास्तव में यह व्रत हो कि भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर करने के लिए कहा था और जिसका इतना ऊंचा महात्म्य है और कोई और ही व्रत था। भगवान के इस कथन का माना कथा का भाव कुछ और ही था। पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ कहा गया है कि यह कथा नैमिष्य पुराण तीर्थ में सुनाई गई थी। यह नैमिष्य पुराण सीतापुर जिले में है, परंतु यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रसंग में मन ही नैमिष पुराण है, क्योंकि नैमिष माना अर्थात पलक झपकने जितनी देर में जहां आत्मा का अनुभव हो जाए वही नैमिष तीर्थ है, अरण्य वन को कहा जाता है, अरण्य वन को कहते हैं। जब हम मन को निर्जन वन के समान बना देते हैं अर्थात किसी भी मनुष्य या देहधारी को याद करने के बजाय एक परमात्मा की ही स्मृति में स्थित हो जाते हैं तो भ्रुकुटी रूपी कुटी में बैठकर आत्मा को स्वरूप का अपने अनुभव होता है। अब तनिक तीर्थ शब्द की और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तीर्थ तारने वाले को कहते हैं, अतः तीर्थ किसी वन में या जलाशय के स्थान पर होने को सिर्फ इसको ही नहीं कहते, बल्कि गुणों को धारण करना पवित्रता ही सच्चा तीर्थ है। स्वयं स्कंद पुराण जिसमें कि सत्यनारायण व्रत कथा मिलती है कि काशी खंड में ही कहा गया है, सत्य क्षमा दया इंद्रिय निग्रह मधुर वचन संतोष इत्यादि इत्यादि सभी तीर्थ है। ये जो श्लोक है वहां पर स्कंद पुराण का जो श्लोक है, तरंति येन तत्र व तत्त तीर्थम माना सत्य क्षमा दया इंद्रिय निग्रह मधुर वचन संतोष इत्यादि सभी तीर्थ है। अतः मन रूपी वन में इन दिव्य गुणों की धारणा करके एक टिक बैठना ही नैमिष्य रण में व्रत कथा के लिए तैयार होना है। अब यह भी समझने की बात है कि व्रत का क्या अर्थ है। वास्तव में किसी भी नियम या दिव्य गुण को धारण करके उसे अपनाए रहने के लिए दृढ़ संकल्प किए रहना ही व्रत लेना है। इस दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निग्रह ही सर्वोत्तम तीर्थ या सर्वोत्तम व्रत है। स्वयं स्कंद पुराण जिसमें यह श्लोक है, सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ तीर्थमेन्द्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थ तीर्थ मार्जवमेश्च दानह तीर्थ दमस्तीर्थ संतोष स्थितीर्थ मुच्यते। दूसरा, एक हिंदी कवि ने भी कहा है, मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान दस द्वारों का देहरा तामे ज्योत पहचान। व्रतामति कर्म नाम निवृत्ति कर्म वार्यतिति ही सतह इदं पति तरद्वह त्वमेस्मदा देव वृषान सतह। अर्थात बुरे कर्मों से हटा देता है, इसीलिए इसे व्रत कहते हैं। स्वीकार या ग्रहण किया जाता है, इसीलिए भी इसे व्रत कहते हैं। तो बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी को दृढ़ता से धारण करने को ही व्रत कहते हैं। एक और श्लोक है, ब्रह्मचर्य परम तीर्थ तीर्थस्य प्रियवाजितः ज्ञान तीर्थ घृति तीर्थ तपस्ति युति दाह मानस्तः तीर्थानामपि ततीर्थः विशुद्धिर मनसः परा न जला लुप्तः देहस्य स्नानामि त्याविधीयते स स्नान्तो यो दमस्नातः शुचि शुद्ध मनोमलः। ये जो श्लोक है ये स्कंद काशी खंड के छठवें अध्याय में 26वें श्लोक में 33वां श्लोक है, 26वें खंड में 33वां श्लोक है। तो ध्यान रहे कि यहाँ यह भी कहा गया है कि जिसने इंद्रिय संयम रूपी स्नान किया है वास्तव में वही पवित्र है। स्वयं स्कंद पुराण में स्कंद पुराण की जो कथा है जिसमें यह कथा है उसमें यह भी कहा गया है, परंतु लोग इस प्रकार के वन तीर्थ और व्रत पर तो ध्यान ही नहीं देते। और तब नर से श्री नारायण बनने की सत्य कथा सुनने के न तो वे पात्र ही बनते हैं, न ही उस कथा का कथित फल ही प्राप्त कर सकते हैं। आज जबकि एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के तन में दिव्य प्रवेश करके सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव ने हमें फिर से नर से श्री नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाई है, तो हम जान सकते हैं कि हम वह व्रत कौन सा व्रत है और वह सत्य कथा कौन सी है। जैसे कि ऊपर में कहा गया है, वास्तव में वह व्रत है ब्रह्मचर्य का अथवा पूर्णतः पवित्रता का व्रत है। भगवान कुछ घड़ियों के लिए निराहार रहने की आज्ञा नहीं देते, बल्कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो संगम है, उस थोड़े से काल में निर्विकारी जीवन व्यतीत करने की आज्ञा देते हैं। आज मनुष्य ने काम, क्रोध आदि विकारों को आत्मा का आहार मानकर रखा है, तभी तो वे नित्य इन विकारों में बर्तत तथा इन्हें स्वाभाविक मानते हैं, इसको बर्ताव को स्वाभाविक मानते हैं। भगवान कहते हैं कि इन विकारों रूपी आहार को छोड़ना ही सच्चा सर्व उत्तम व्रत है, वह निर्विकारी व्यतीत करने की आज्ञा देते हैं। वास्तव में तन मन धन से कोई भी बुरा कर्म न करना, यही सर्वोत्तम व्रत है, जिसको करने से नर कंगाल से ताजधारी, निर्धन से सदा धनवान, रोगी से सदा निरोगी और सुखी संपत्तिवान बन जाता है और मुक्ति को और वैकुंठ में देव पद को प्राप्त कर लेता है। कथा में ब्राह्मण, भील, वैश्य आदि का उल्लेख क्यों है? इस व्रत को भील, ब्राह्मण, राजा, व्यापारी, नर नारी सभी कर सकते हैं और इस लोक में सुख भोगते हुए भविष्य में वैकुंठ का सुख प्राप्त कर सकते हैं। कथाकार ने इस भाव को स्पष्ट करने के लिए नारी कलावती और लीलावती, व्यापारी वैश्य और उसके जमाता राजा, उल्का मुख, भिखारी, ब्राह्मण और भील आदि की कथाएं बना दिए और उसने असंभव बातें मिश्रित कर दी। उसने भगवान माना शिव, भगवान का स्पष्ट परिचय भी नहीं लिखा और जिस वृद्ध ब्राह्मण के तन में भगवान प्रविष्ट अथवा संविष्ट हुए और उनको ब्रह्मा नाम दिया, उनका भी परिचय नहीं दिया। इस प्रकार सारा भाव अस्पष्ट, अनिश्चित और असंभव मालूम होता है, सारी बात बिगड़ गई है। कौन सा बेड़ा किसमें डूबता है और कौन सा बेड़ा तैरता है? पुनश्च भगवान कहते हैं, जो नर नारी निर्विकारी जीवन व्यतीत करते इस रूप को, इस निर्विकारी जीवन को व्यतीत करने रूपी व्रत को करेंगे, वे धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे और संसार रूपी सागर से उनका जीवन रूपी बेड़ा तर जाएगा और जो इस व्रत को नहीं करेंगे, उनका जीवन रूपी बेड़ा शोक सागर में डूब जाएगा। परंतु कथाकार ने स्थूल बेड़े के डूबने और तैरने की बात लिख दी है। अब आगे हम समझेंगे धन और रत्नों के लता पत्र आदि भरने का भावार्थ। इसके अतिरिक्त भगवान तो कहते हैं कि तन मन धन मेरे अर्पण करके स्वयं को ट्रस्टी अर्थात निमित्त मानकर कर चलो, ताकि आपकी आसक्ति मिट जाए और कल्याण हो जाए। अब जो ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ ब्रह्मा के मानवी तन में प्रविष्ट भगवान के इन महावाक्यों से यह अर्थ लेते हैं कि शायद भगवान को उनसे कुछ लेने की इच्छा है, तो वे भगवान से अपना धन धान्य छिपाते हैं। वे यह नहीं समझते कि भगवान तो धन संपत्ति आदि के दाता है, वह हमारा लेकर कर क्या करेंगे। तो जो इस प्रकार भगवान से अर्पणमय न होकर कर उनको ही मांगने वाला समझते हैं, उनका इस विश्व में कल्याण नहीं होता, क्योंकि उनकी मोह ममता नहीं मिटती। अब उनके अकल्याण की बात को कथाकार ने इस प्रकार लिख दिया है कि भगवान के श्राप से उनका सब धन धान्य लता पत्र आदि बन जाता है, और पुनः व्रत रखने पर उसके वरदान से वह धन और सोना वापस बन जाता है। कथाकार के इस प्रकार के लेख से असंभावना का तत्व आ गया है, क्योंकि वास्तव में धन कभी भी लता या पत्रों का रूप धारण नहीं कर सकता। अतः वास्तविकता को इस अविश्वसनीय शब्दों से व्यक्त करने से सारी बात बिगड़ गई है। संक्षेप में हम पुनरावृत्ति का विचार न करते हुए यही कहना चाहेंगे कि सत्य स्वरूप भगवान शिव नर को श्री नारायण साहब बनाने के लिए अथवा मुक्ति और जीवन मुक्ति के योग्य बनाने के लिए पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य रूपी व्रत बताते हैं। श्री नारायण रूपी लक्ष्य की स्मृति बनाए रखने की आज्ञा देते हैं और अर्पणमय जीवन व्यतीत करने की सम्मति देते हैं। जो इस पवित्रता रूपी व्रत का पालन करता है वह तर जाता है और धन संपत्ति का मालिक बन जाता है, और जो नहीं करता उसका जीवन रूपी बेड़ा डूब जाता है। अब हम पहले सत्य स्वरूप परमात्मा का परिचय व्यक्त करते हैं और उसके बाद सत्य नारायण की सच्ची कथा का उल्लेख करेंगे। सत्य, सत्य अर्थात परमपिता परमात्मा का परिचय। परमपिता परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन और मुक्ति तथा जीवन मुक्ति के दाता है। कल्याणकारी होने के कारण उनका दिव्य अथवा कर्तव्य वाचक नाम शिव है। भारत के लोग शिवलिंग नाम की मूर्ति बनाकर आज दिन तक पूजन करते हैं, परंतु पूजा करने वाले भगत लोग शिव के पूर्ण एवं यथा सत्य परिचय को नहीं जानते। यद्यपि चीर काल से सर्वशक्तिवान एवं सदगति दाता परमपिता परमात्मा शिव की सारे विश्व में इसी शिवलिंग रूप में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न धर्मों देश में पूजा होती रहती है, तथापि लोगों को इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है। भारत में गोपेश्वर और रामेश्वर के जो मंदिर है उनसे यह भी स्पष्ट विदित होता है कि परमपिता परमात्मा शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी श्रद्धेय माननीय एवं पूज्य है। उज्जैन में या सोमनाथ में जो विक्रमादित्य द्वारा और मक्का में इब्राहिम के द्वारा भी इसकी स्थापना इसी रूप में हुई है, और इससे ही यह सिद्ध होता है कि इस्लाम धर्म के जो संज्ञेय अस्वाद है वह वास्तविक में शिवलिंग का ही प्रारूप है। ईसा मसीह नानक और दूसरे धर्म संस्थापकों ने भी परमपिता परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप ही माना है। परमपिता परमात्मा परमात्मा के जितने भी भिन्न भिन्न नाम हैं वे सब उनके कर्तव्यों से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर परमात्मा सारे जगत का व सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्हें हम शिव नाम से याद करते हैं। परमात्मा हम आत्माओं की 84 जन्मों की कहानी और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य सुनाते हैं। अतः अमर कथा सुनाने वाला होने के कारण परमात्मा को हम अमरनाथ कहते हैं, और ज्ञान रूपी सोम रस पिलाने वाला होने के कारण उसे सोमनाथ कहते हैं, तथा मनुष्य सृष्टि का रचयिता होने के कारण उनका एक नाम विश्वेश्वर नाथ भी है, और कालों के काल होने के कारण उनका एक नाम महाकालेश्वर भी है। हम सभी आत्माओं का पिता होने के नाते उसको परम पिता परमात्मा गॉड द फादर भी कहा जाता है और सर्व उच्च होने के कारण अल्लाह भी कहते हैं। परमात्मा शिव अमर कथा सुनाने के लिए व भ्रष्टाचारी एवं पतित दुनिया को श्रेष्ठाचारी व पावन बनाने के लिए एक बूढ़े अनुभवी मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं और उनके मुख द्वारा सारे शास्त्रों का सार सुनाते हैं, जिसे हम भगवान का गीत अर्थात अथवा भगवत गीता भी कहते हैं। वह मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा कहलाता है। परमपिता परमात्मा शिव का प्रजापिता ब्रह्मा दोनों का दिव्य जन्म भारत में ही होता है, इसीलिए भारत में ही शिव का सबसे अधिक गायन है और भारत का भी सारे विश्व में गायन होता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो अमर कथा या सत्य नारायण की कथा परमपिता परमात्मा शिव सुनाते हैं, उसे अब वह पुनः सुना रहे हैं। अब हम उसका उल्लेख करेंगे। सत्य नारायण की सच्ची कथा। परमपिता परमात्मा शिव ने जो सत्य नारायण की कथा सुनाई है वह संप्रेक्ष्य में इस प्रकार है। आज से 5000 पूर्व सृष्टि पर सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जल थल नभ चर अचर सभी पर अखंड चक्रवर्ती राज्य करते थे। उस समय सृष्टि में संपूर्ण सुख और शांति थी। दूध और घी की नदियां बहती थी। सोने के रत्नों से जड़े हुए महल थे। प्रकृति मनुष्यों की दासी थी। तब काया निरोगी और कंचन सम रूप हुआ करती थी। सब और आनंद मंगल छाया हुआ था। अशांति और दुख का तो कोई नाम तक नहीं जानता था। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। अपनी इच्छा के अनुसार सभी प्राणी अपना पुराना शरीर रूपी चोला बदलते थे। उस समय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस तनिक भी नहीं थे। सभी जन्म से ही महात्मा थे। यह देश देवस्थान था। सभी निर्विकारी और पूर्णतः पवित्र आत्माएं थी। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य का सुख और शांति को भोगने के लिए परम धाम से अर्थात मुक्ति की अवस्था से इस सृष्टि में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने अपने समय पर आकर कर साकार हुई। इस सृष्टि में इन पवित्र आत्माओं की सुख शांति संपन्न अवस्था को सतो प्रधान अवस्था अथवा जीवन मुक्ति कहा जाता है। तब जन्म भी योग बल से रुदान रहित होता था। उस समय सृष्टि में बस एक ही सत्य धर्म था, जिसे देवी देवता धर्म कहते हैं। एक भाषा एक देव भाषा का ही प्रचलन था। उस समय हर एक चीज में सत्व था। राजा और प्रजा दोनों ही सुख और शांति प्रेम से परिपूर्ण रहते थे। गोया सभी दो ताजधारी प्रभा मंडल और स्वर्ग मुकुट से युक्त थे, स्वर्ण मुकुट से युक्त थे। तब सभी को सभी प्रकार का सब कुछ प्राप्त था, इसीलिए वहां इच्छा या तृष्णा नहीं थी। उक्त प्रसिद्धि है कि देवताओं के खजाने में किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं थी। जल अग्नि वायु पृथ्वी जीव जंतु कोई भी कष्ट नहीं देते थे। तब कोई भी दैत्य राक्षस या असुर नहीं था। सभी एक देवता वर्ण के ही थे। तब कोई पूजा के स्थान कोई शास्त्र आदि कभी नहीं थे, बल्कि सभी स्वयं पूजनीय अवस्था वाले साक्षात देवी देवता थे। लड़ाई बिल्कुल नहीं होती थी, इसीलिए न सेना थी न अस्त्र शस्त्र आदि होते थे। न रोग थे न कोई औषधालय भी थे, कोई दवाखाना नहीं था, क्योंकि मनुष्यों के जीवन में न तनाव था और न ही पर्यावरण प्रदूषण था, न खाने की कोई वस्तुओं में मिलावटें थी, न लोग स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन ही करते थे। अतः लोग दीर्घजीवी थे, उनकी औसतन आयु 150 वर्ष थी। तब न मुकदमे थे, न न्यायालयों की जरूरतें थी, न कोई निर्धन या कंगाल या भ्रष्टाचारी था, न हड़तालें ही होती थी, बल्कि सभी श्रेष्ठाचारी थे। महारानी और महाराजा जनता के माता पिता के समान बरतते थे। शासन दंड के भय से नहीं बल्कि स्वाभाविक स्नेह पर आधारित था। कहावत है कि तब शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। इन देवी देवताओं के पवित्र होने के कारण ही उनके परिचय में उन्हें कमल हस्त, कमल नेत्र, कमल मुख आदि विशेषणों से युक्त किया जाता है। जीवन में कभी रोग, दुख या संकट न होने के तथा अखंड पवित्रता होने से उनके मुखमंडल पर एक सात्विक आभा विराजमान थी और उनके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण और प्रभुत्व था तथा उनसे शीतलता और दिव्यता के स्पादक विकिरण होते थे। वे ऐसे मधुर स्वभाव वाले थे कि आज लोग उनकी मूर्तियों के सामने बैठकर उनकी पार्थिव प्रतिमाओं से भी शांति का अनुभव करते हैं तथा धन धान्य की इच्छा पूरी करते हैं। सतयुग के देवी देवताओं को सूर्यवंशी कहा जाता है, क्योंकि उनमें आत्माओं का तेज पूर्ण कलाओं को प्राप्त था, अर्थात उनकी पवित्रता 16 कला थी। तब कोई भी छुआछूत नहीं थी, न रंग का भेद, न वर्ण का भेद, न भाषा का भेद था। सभी स्वधर्म में, माना आत्मा के आत्मिक स्वरूप में स्वाभाविक रूप से स्थित थे। अपनी इन विशेषताओं के कारण सतयुग का आज तक भी गायन है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का वह राज्य पूरी 8 पीढ़ियों तक चला। उस युग की आयु 1250 वर्ष थी, उसी को सतयुग कहते हैं। वह सृष्टि मानो फूलों का एक विराट बगीचा था, अथवा वही स्वर्ग था, वैकुंठ था। जिस प्रकार एक नया मकान कुछ समय के बाद पुराना हो जाता है, उसी प्रकार वह नई सुख की दुनिया धीरे धीरे पुराना होना शुरू हुई और पवित्रता, सुख, शांति की 16 कला में से 2 कला कम हो गई और तब त्रेता युग और श्री सीता, श्री राम का राज्य शुरू हुआ। यथा राजा प्रजा की उक्ति से इस अनुसार उस समय भी सृष्टि पर सर्व सुखों व पूर्ण शांति का स्वराज्य था। उस राम राज्य के सुखों का स्वप्न भारतवासी अभी तक भी देखते हैं। गांधी जी भी उसी राम राज्य का स्वप्न देखा करते थे। राम राज्य में भी मनुष्यों को अपने जीवन निर्वाह अर्थात अर्थोपार्जन के लिए बहुत कुछ विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। तब भी भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। राजा के लिए न एक दूसरे पर आक्रमण होते थे और न ही किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष होता था। तभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। माता पिता के जीवन काल में उनके पुत्र को छू नहीं सकता था। तब पवित्रता, सुख, शांति की दृष्टि से भी नारी, नर नारायण 14 कला संपूर्ण थे। जैसे कि पूर्णमासी के एक दिन पूरा 14 कला वाला चांद होता है, वैसे ही त्रेता युग में भी सभी आत्माएं 14 कला प्रकाशमान थी। उस समय, उस युग में भी सभी निरोगी थे। तभी भी लोग स्वभाव से धर्म स्थित, धर्म ही उनके कर्म का कर्म पर अंकुश था। इससे यह निष्कर्ष जो है वो स्पष्ट है कि राम के राज्य में रावण नाम का असुर या राक्षस नहीं था। भला किसी की सामर्थ्य कि राम की सीता को कोई बुरी दृष्टि से देख भी सकता? चुराने की तो बात एक और रही। वास्तव में राम और रावण की आध्यात्मिक कथा एक अन्य युग से संबंधित है। त्रेता युगी राजा राम तो जीवन मुक्त थे और पावन थे। उनके जीवन काल में देहिक या किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य न काहू व्यापा। त्रेता युग में न कोई श्रवण कुमार के माता पिता की तरह नेत्रांध होते थे, न कोई किसी को श्राप देते थे, न कोई मंत्रा जैसी नारियां थी, न कैकेयियों की तरह कोई सौतेली माताएं थी। गृहस्थ धर्म में एक से अधिक विवाह की कोई करता ही नहीं था। न कोई जरा पीड़ित होता था, न कोई किसी से वियोग के शोक में मरता था। सभी मोह जीत थे। राम के राज्य में तथा उससे पहले भी यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार सभी धर्म युक्त और उच्च आचरण वाले थे। तब न कोई काला धोबी था, न ही कोई किसी की निंदा करता था। तभी तो राम राज्य की इच्छा भी करते हैं। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। भला किसी की मजाल कि राम की रानी पवित्र सीता का अपहरण कर सके? क्या कभी कोई सोने का हिरण होता है? क्या 10 सिरों वाला भी कोई व्यक्ति हो सकता है? क्या पृथ्वी में दबे घड़े से किसी का जन्म संभव है? वास्तव में राम कथा तो रामेश्वर यानी शिव से संबंधित है। परम पिता परमात्मा को रमणीय अर्थात मन को प्रिय लगने वाला होने के कारण राम भी कहा जाता है। रावण शब्द का अर्थ राम के विपरीत है। रावण रुलाने वाले ही को कहा जाता है। पांच विकार ही मनुष्य आत्मा के रुदान अर्थात दुख एवं अशांति के कारण है। अतः पांच विकारों का सामूहिक नाम ही रावण है। रावण के 10 सिर नर और नारी में पांच पांच विकार होने के सूचक है। अतः राम कथा उस समय से संबंधित आध्यात्मिक कथा है जब समाज का हर नर नारी पांच पांच विकारों से पीड़ित था। वास्तव में यह सारा संसार ही एक बहुत बड़ा द्वीप अथवा टापू है, क्योंकि इसके चहुं ओर सागर है। अतः यही श्रीलंका है, वरना आज जिसे हम लंका कहते हैं उसके इतिहास में तो 10 सिरों वाला कोई असुर राजा हुआ ही नहीं। इस बात की सत्यता स्वयं उस देश के वासियों से पूछी जा सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हरेक आत्मा ही सीता है। वह अयोनिज है। आत्मा के पति परमात्मा ही राम है। जब मनुष्य आत्मा लक्ष्य में मन को लगाने की मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा को उल्लंघती है, तभी उसे पांच विकारों रूपी रावण अपहरण कर लेता है और बंदी बना लेता है। तब परमपिता परमात्मा माने कि शिव ही उसे छुड़ाते अर्थात मुक्ति दिलाते हैं। यह सारा वृत्तांत कलयुग ही के अंत में होता है। त्रेता युगी राजा राम के समय में न तो कोई कुंभकर्ण होता है, न मेघनाथ और न रावण। त्रेता युग में
श्री राम की 12 पीढ़ियों ने राज्य किया। उस युग की भी आयु 1250 वर्ष थी। उस समय उसी सतोगुणी स्वभाव वाली आत्माएं ही इस सृष्टि में साकार हुई। तब भी एक ही सत्य आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात आर्य धर्म था। सतयुग और त्रेता युग की आत्माओं में से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण अति प्रसिद्ध हुए हैं तथा श्री सीता और श्री राम की आत्माएं भी श्रेष्ठ व मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं मानी जाती है। त्रेता युग के अंत में सृष्टि और भी पुरानी हो गई और उस समय पवित्रता तथा सुख शांति की 6 कलाएं और कम हो गई। तब देवी देवता वाम मार्ग में चले गए अर्थात पतित हो गए। इन दोनों युगों को ब्रह्मा का दिन कहते हैं। द्वापर युग के आदि से माया का अर्थात आत्माओं के सबसे पुराने दुश्मन रावण का राज्य शुरू हुआ। दुख और अशांति शुरू हो गई और मनुष्य आत्माओं का सतो सामान्य से रजो प्रधान अवस्था में आना शुरू हुआ। मनुष्य आत्माएं धीरे धीरे 5 विकारों के जाल में जकड़ती गई और उसी समय अन्य धर्म पिताओं द्वारा दूसरे धर्मों की स्थापना शुरू हुई। तब देवी देवता धर्म में विकार आ गए थे। दूसरे धर्मों में सबसे पहले इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इसी द्वापर युग से ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ और वेद उपनिषद शास्त्र और पुराण लिखे गए और शिवलिंग की मूर्ति के रूप में पूजा शुरू हुई। यही वह समय है जब ऋषि और मुनि हुए और उन्होंने धार्मिक ग्रंथ लिखे। उस समय भक्ति सतो प्रधान अवस्था में थी, इसीलिए केवल निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही की पूजा होती थी। लेकिन धीरे धीरे भक्ति भी सतो प्रधान अवस्था से उतरकर नीचे रजो प्रधानता की अवस्था को प्राप्त हुई और अन्य धर्म पिताओं की आत्माएं भी सृष्टि मंच पर आना शुरू हो गई। तब विष्णु, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, शंकर, श्री कृष्ण, श्री राम आदि आदि की पूजा शुरू होती गई। यज्ञ, जप, माला स्मरण, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, कर्म कांड आदि शुरू होते गए। लोगों की धर्म में बहुत रुचि और श्रद्धा थी। वे यम नियमों का पालन करने के लिए कठोर व्रत लेते थे। ऋषि लोग जंगलों अथवा अरण्यों में रहकर शास्त्र लिखते, पढ़ते और पढ़ाते थे। राजा लोग भी धर्माचार्यों का मान बहुत करते थे। इसी काल में वर्ण आश्रम के विभाग ने रूप लिया और जाति पंथी तथा भेदभाव शुरू हुए। धीरे धीरे अनेक धार्मिक संप्रदाय बनते गए और लोगों में मतभेद शुरू हो गए तथा उग्र रूप लेने लगे। देश कई राज्यों में बढ़ता गया। समयांतर में इंद्रिय संयम टूटने लगा। रोग, शोक, जरा, मृत्यु, दुख और अशांति डेरे डालने लगी। इब्राहिम के इस्लाम धर्म की स्थापना करने के लगभग 250 वर्ष के बाद बुद्ध ने आकर कर बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसके लगभग 250 वर्ष के बाद ईसा मसीह यानी कि क्राइस्ट आए। उन्होंने ईसाई यानी कि क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। इसके लगभग 500 वर्ष के बाद शंकराचार्य आए। उन्होंने कर्म संन्यास घराने की स्थापना की। उनके लगभग 100 वर्ष के बाद मोहम्मद साहब ने आकर कर मुस्लिम घराने की स्थापना की। इस प्रकार अनेक धर्म स्थापकों द्वारा अनेक धर्मों की स्थापना हुई। तब अनेक धर्म स्थापकों और देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हो गई। इन धर्म स्थापकों को दूसरे शब्दों में पैगंबर भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये धर्म स्थापक परमात्मा का अपने अपने ढंग से परिचय देते हैं, लेकिन कोई भी गति व सदगति के रास्ते पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि सदगति दाता तो एक परमात्मा ही है। अतः इतने धर्म स्थापकों के आने के पश्चात भी सारी सृष्टि फिर भी गिरावट की ओर ही आती गई और द्वापर के अंत में भक्ति रजोगुणी अवस्था से गिरकर तमोगुणी अवस्था को प्राप्त हो गई। तब पवित्रता की कलाएं भी अति क्षीण हो गई। द्वापर युग की आयु भी 1250 वर्ष होती है। द्वापर युग के अंत और कलयुग की आदि में देवताओं की भक्ति होने के अतिरिक्त प्रकृति के विभिन्न तत्वों की भी पूजा होनी शुरू हो जाती है और भ्रष्टाचार, पापाचार, अंधकार बढ़ता ही जाता है। उस समय अनेक समाज उत्पन्न हो जाते हैं और वे एक दूसरे के धर्म पर आक्रमण भी करते हैं और धर्म के नाम पर पाप भी करते हैं। लोग परमपिता परमात्मा की इतनी ग्लानि करने लगते हैं कि वे कहने लगते हैं कि कुत्ते में, बिल्ले में, जल में, पेड़ में, ठिकर में, पत्थर में, सब में परमात्मा है। तब अपने आप को भगवान व शिवोहम कह करके उससे वे बिल्कुल विमुख कर देते हैं। इस युग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, आलस, लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। राजा लोग एक दूसरे पर आक्रमण करके दूसरों के राज्य को हड़पने लगे। वस्तुओं का मूल्य धीरे धीरे बढ़ता गया। लोगों में स्नेह का स्थान मोह ने लेना शुरू किया। जाति पंथी की जंजीरें कड़ी होती गई। मर्यादाएं टूटने लगी, नियम ढीले होने लगे। राजा लोग ऐश इश्तिहार और रंगरलियों में रहने लगे और उनके आचरण को वासना तथा विकारों का घुन खाने लगा। इसीलिए धीरे धीरे लोग राज सत्ता के विरुद्ध होते गए। लोगों में आचरण की श्रेष्ठता मिटने लगी और उनके स्थान पर कर्मकांड तथा ब्राह्मणों द्वारा पूजन आदि की विधियां ज्यादा प्रचलित होने लगी। रसम रिवाज पेचीदा और खर्चीले होते गए। समयांतर में लोग धर्माचारों से भी तंग आने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे धर्म सत्ता और राज सत्ता, जो दोनों अलग हो गए थे, का नैतिक प्रभाव समाज पर कम होता गया। कलयुग झूठ, फरेब और तमोगुणी युग है। जैसे जैसे समय बीतता है, लोग अधिक पतित होते जाते हैं। वे सच्चे मन से, अनन्य भाव से अपने इष्ट की भक्ति नहीं करते। मनुष्य का स्वभाव चंचल होता जाता है। आश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न होती जाती है। मानो केवल एक विकार युक्त गृहस्थ ही शेष रह जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम को भी वे ठीक रीति से नहीं निभाते, बल्कि उनकी दृष्टि, वृत्ति और कृति दूषित हो जाती है। वे आरती करते हुए भगवान से प्रार्थना तो करते हैं कि विषय विकार मिटाओ, परंतु वे स्वयं विकारों को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते। न ही मन से वासना आदि को छोड़ने की सच्ची कामना ही करते हैं, बल्कि वासनामय तथा विकारी जीवन को ही स्वाभाविक मानने लगते हैं। वे काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार मानते हुए भी प्रतिदिन उसी में से गुजरते हैं। साधु चोले को बदनाम करने वाले साधु बहुत होते हैं। भक्ति और पूजा के नाम पर प्रायः ब्राह्मण तथा पंडे और पुजारी धनोर्पर्जन के लोभ में पड़ जाते हैं। लोग उनके चरित्र बल तथा उनकी आध्यात्मिक स्थिति से प्रेरणा नहीं ले सकते। राज कारोबार में कूटनीति और छल बल का प्रयोग प्रचुर होने लगता है। युद्ध के नियमों को भी तोड़ा जाता है। राजा लोग अपनी विलासिता के लिए प्रजा का खून चूसने तथा कन्याओं माताओं पर कुदृष्टि रखते सैन्य बल और सत्ता के नशे में चूर तथा सुरा सुंदरी के दलदल में फंस जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग के चरण बढ़ते हैं वैसे वैसे लोगों में धार्मिक संकीर्णता, वाद विवाद, कलह कलेश, नास्तिकता आदि बढ़ने लगते हैं। लोग अधिकाधिक देह अभिमानी बनते जाते हैं। उनके जीवन में अशांति और दुख बढ़ते जाते हैं और कलयुग का अंतिम चरण आने पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार तथा विकार के कारण त्राही त्राही मच जाती है। कलयुग के अंतिम चरण में ऐसी अवस्था होती है कि कन्या अपने मुंह से वर मांगने लगती है। आकाश से अग्नि वर्षा करने वाले बॉम्ब तैयार कर लिए जाते हैं। सभी वर्ण एक प्रकार से शूद्र वर्ण ही हो जाते हैं क्योंकि वे आसुरी लक्षण वाले तथा विकारी बन जाते हैं। अनाज पुड़ियों में और दूध बोतलों में बिकने लगता है। जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि हर जगह भीड़ ही दिखाई देती है। गाय कचरे में मुंह मारने लगती है। नर नारियों में रोग बढ़ते जाते हैं और उनकी आयु छोटी होती जाती है। अब जो वर्तमान समय चल रहा है वह ऐसा ही समय है। वही कलयुग का अंतिम चरण ही है। इस प्रकार यह कहानी 5000 वर्ष के पश्चात पुनरावृत्त होती है। अब सचमुच वही कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। जब ऐसा समय आता है तब कर्म संन्यास धर्म वाले सन्यासी लोग अल्पज्ञ होते हुए भी श्री श्री 108 जगत गुरु की ईश्वरीय उपाधि का अपने नाम के साथ प्रयोग करने लगते हैं। इस समय रावण अर्थात माया यानी कि पांचों विकार का पूर्ण प्रभाव अथवा राज्य होता है। ये देखिए, ये चित्र में मनुष्य सृष्टि के इस इतिहास चक्र में सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत और फिर संगम युग में परमात्मा के अवतरण का वृत्त अंकित है। मनुष्य आत्मा पांचों विकारों में बुरी तरह से फंसी हुई होती है। भाई भाई का खून करता है। मां बहनों की लाज लूटी जाती है। अबलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ता है। चोर बाजारी होती है। अकाले मृत्यु होती है। अकाल पड़ता है। भुखमरी फैलती है। भूकंप और तूफान आते हैं तथा अति वर्षा होती है। अनेक प्रकार के रोग आते हैं। हर तरफ अशांति व अधर्म का राज्य छा जाता है। उस समय मनुष्य आत्मा बहुत दुखी होती है और परम पिता परमात्मा को अपनी अपनी मान्यता के अनुसार पुकारती है। अपने बच्चों की उस पुकार को सुनकर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव गीता में लिखे अपने वचन के अनुसार उसी कलयुगी आसुरी संप्रदाय वाली सृष्टि पर दिव्य रीति से अवतरित होते हैं। परम पिता परमात्मा शिव अजन्मा और अभोक्ता है और सब आत्माओं के मात पिता है। इसीलिए इस सृष्टि पर उनका जन्म मनुष्य या देवताओं की तरह गर्भ से नहीं होता, बल्कि वे तो एक साधारण बूढ़े और अनुभवी मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। यही उनका दिव्य जन्म कहलाता है। जिस साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के शरीर में वे प्रवेश करते हैं, परमात्मा उनका नाम अब प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। वह प्रजापिता ब्रह्मा ही बूढ़ा ब्राह्मण है जिसको वे पहले सत्यनारायण की कथा सच्ची कथा सुनाते हैं और सत्यनारायण का व्रत यानी कि पूर्ण पवित्रता का व्रत रखने के लिए कहते हैं। पवित्रता रूपी सत्य व्रत धारण करने के कारण ही श्री नारायण पद के बाद 83 जन्म ले फिर 84वें जन्म में निर्धन भारत में एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने वाला यही वह ब्राह्मण है जिसके बारे में आज प्रचलित सत्य नारायण व्रत कथा में उल्लेख है। उसी वृद्ध प्रजापिता ब्रह्मा रूपी ब्राह्मण के तन में अवतरित होने के कारण ही गायन भी है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो, क्योंकि उसी साकार माध्यम द्वारा ही वे कंगाल भारत को कंचन के महलों वाला सतयुगी पावन भारत अथवा स्वर्ग बना देते। उसी रूप में ही भीलों के समान प्रायः निर्धन बने भारत को परम पिता शिव धनवान बना देते हैं और व्यापारियों के भी डूबे हुए जीवन रूपी बेड़े को निकालकर पार उतारते हैं। सभी को वे 84 जन्मों की यह आत्मा की कथा तथा सत्य माने परमात्मा और श्री नारायण की कथा सुनाकर उन्हें पतित से पावन बनाते हैं और मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का भागी बनाते हैं। परंतु श्री नारायण की 84 जन्मों की इस सारी कथा का तथा सत्य स्वरूप परमात्मा शिव की जीवन कथा तथा पवित्र रूपी सच्चे व्रत का ज्ञान प्रायः लोप हो जाने के कारण आज केवल व्रत कथा अर्थात व्रत ही की महिमा शेष रह गई है। यह कथा प्रायः लुप्त आज सत्य नारायण की कथा उपलब्ध नहीं है। अब तक अनेकानेक लोगों ने सत्य नारायण कथा को ढूंढ निकालने का प्रयास किया है, परंतु कोई भी व्यक्ति इस प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सका। कुछ लोगों का मतव्य है कि जिस पुराण में पहले यह व्रत कथा थी अब वह पुराण ही नहीं मिलता। इस संबंध में गीता प्रेस गोरखपुर ने कई वर्ष पूर्व में स्कंद पुराण का जो हिंदी अनुवाद छापा था उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि स्कंद पुराण की मूल पोथी में यह कथा नहीं मिलती। दूसरी ओर नई दिल्ली से छपने वाली मासिक पत्रिका कादंबरी के मई 1970 के अंक में पृष्ठ 18 से 21 पर एक विद्वान का लेख सत्य नारायण कथा एक शोध इस शीर्षक से छपा था। उक्त लेखकों सन 1915 से ही इस कथा की खोज में लगे रहे और इसके लिए उन्होंने सभी पुराण पढ़े। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कोंकण में एक अत्यंत जीर्ण पोथी देखने को मिली। उस पोथी में प्रत्येक अध्याय के अंत में इस कनन पुराने पूर्व खंडे ऐसा समाप्ति वाक्य लिखा हुआ था। उनका कथन है कि इस कनन शब्द का अर्थ है खोया हुआ, जिसे जिसके की मिलने की आशा न रही हो, नष्ट हो गया हो। लेखक ने उक्त लेख में कहा है कि उनका विचार है कि यह इस कनन पुराने पूर्व खंडे ही आगे चलकर मुद्रणालय में शब्द जोड़ने वाले मतलब कंपोजिटर की भूल से इस कंद पुराने रेवा खंडे इस प्रकार छप गया। यद्यपि इस कंद पुराण में ऐसी कोई कथा है ही नहीं, तो इसका भाव हुआ कि सत्यनारायण की कथा वास्तव में प्रायः लुप्त है। ऐसी अवस्था में अब इस कथा का, जिसके महात्मा में यह कहा गया है कि यह मुक्ति और वैकुंठ का सुख देने वाली है, यथा सत्य रूप में कौन ज्ञान दे सकता है। निश्चय ही जन्म मरण में आने वाला कोई भी विस्मृतिशील मनुष्य इसके रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकता, बल्कि नर को श्री नारायण बनाने वाले जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, केवल वे ही इसका पुनः ज्ञान दे सकते हैं। वे ही पुनः सच्चे व्रत के पालन की शिक्षा देकर मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण बनने का पुरुषार्थ सिखा सकते हैं। अतः मालूम रहे कि पूर्व पृष्ठों में सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक की जो संक्षिप्त सृष्टि कथा दी गई है, और कलयुग के अंत में सत्य स्वरूप परम पिता शिव के पुनः अवतरण का जो वृत्तांत सार रूप में बताया गया है, वह स्वयं भगवान द्वारा सुनाई गई इस कथा पर आधारित है। उन्होंने ही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा वर्तमान संधि काल में इसका बोध कराया है। यदि लेखक के उपरोक्त स्पष्टीकरण को यहां मान लिया जाए, तो भी इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आज वह पुराण जिसमें यह कथा थी उपलब्ध नहीं है। पुनश्च फिर से आज जो कथा मिलती भी है, वह भी तो व्रत कथा ही है। वह भी सत्यनारायण की सच्ची कथा नहीं है। इस कथा द्वारा सर्व सुखों की प्राप्ति कैसे? अब प्रश्न उठता है कि पूर्व पृष्ठों में चारों अथवा पांचों युगों में मनुष्य आत्मा के जन्म पुनर्जन्म की तथा परम पिता परमात्मा के अवतरण की जिस कथा का उल्लेख किया गया है, उससे मनुष्य को शांति की तथा सर्व सुखों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका उत्तर जानने के लिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे मनुष्य आत्मा को यह स्मृति पुनः उपलब्ध होती है कि मैं आत्मा सतयुग में देव पद को प्राप्त थी। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य काल में सतो प्रधान अवस्था में मैं पूर्णतः पवित्र सर्व दैवी गुणों से युक्त तथा जीवन मुक्त थी। फिर त्रेता युग में दिव्यता की दो कलाएं कम हुई और द्वापर युग के बाद धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की वशीभूत होते होते अब मैं पतित पतन की वर्तमान सीमा को पहुंची हूं। मेरी यह सब अवस्था देह अभिमान ही के कारण हुई है, क्योंकि देह अभिमान से ही राग, द्वेष आदि सभी विकार पैदा होते हैं। अब सारे संसार की तमो प्रधान एवं पतन की अवस्था है। इस अवस्था से निकालने और पुनः नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनाने अथवा तमो प्रधान कलयुग की जगह सतो प्रधान सतयुग की पुनः स्थापना करने, अब परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए हैं। वे अब मेरे ही कल्याण के लिए पवित्र और योग युक्त बनाने के लिए कहते हैं। अतः अब मुझे पुनः पवित्रता रूपी व्रत लेना चाहिए और ज्ञान रूपी प्रसाद प्राप्त करना चाहिए, तथा योग युक्त होना चाहिए। इसके लिए अब मुझे अवहेलना या देर नहीं करनी चाहिए, वरना अभी कुछ काल के बाद सभी धन धान्य लता तृष्ण ही हो जाने वाले हैं और पाप में संसार का बेड़ा डूब ही जाने वाला है, क्योंकि पाप मन वाले मनुष्य ने अपने ही हाथों अपने मानव वंश का महाविनाश करने के लिए एटम और हाइड्रोजन बम, लेजर, हथियार तथा अनन्य महाघातक अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। इस प्रकार स्मृति लाभ होने से मनुष्य आत्मा पुनः स्व स्वरूप में स्थित होने, परम पिता परमात्मा शिव से अनन्य प्रीति जोड़ने, जितेंद्रिय बनने, ज्ञान प्रसाद प्राप्त करने तथा आहार व्यवहार आदि की शुद्धि का व्रत लेने का पुरुषार्थ करेंगी और इस उत्तम पुरुषार्थ का फल तो निश्चय रूप से पूर्व विकर्मों का दगद होना, वर्तमान जीवन में पूर्ण शांति तथा योग का आनंद प्राप्त करना तथा भविष्य में मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना ही है। यही कारण है कि आज भी सत्य नारायण व्रत कथा करने वाला आमोद प्रमोद करते और खुशी से नाचते गाते हैं। यही इस बात की प्रतीक है कि सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने वाले मन वचन कर्म से शुद्ध एवं सत्य बनते हैं, अथवा नारायण के समान कमल मुख, कमल नेत्र, कमल हस्त बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए तो सारे संसार में हर्ष और खुशी खुशी ही है। नर से श्री नारायण बनने का व्रत। हम देखते हैं कि मंदिरों में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जो मूर्तियां हैं, उनके सामने जाकर भगत जन इन शब्दों से अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा धर्म वाले इत्यादि इत्यादि। ऐसा कहते हुए भी शायद ही किसी के मन में यह चिंतन चलता होगा कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण भी तो हमारी ही तरह दो आंख, दो कान, दो पांव वाले, परंतु वे पूज्य है और हम पुजारी। ऐसा अंतर क्यों? यदि मनुष्य इस प्रश्न पर विचार करे तो वह अवश्य ही इसी निश्चय पर पहुंचेगा कि नर और नारायण में मुख्य अंतर यही है कि नारायण सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी है, परंतु आज नर आसुरी गुण संपन्न और विकारी है। अतः अब आवश्यकता इस बात की ही है कि नर स्वयं में सब दैवी गुण धारण करे और संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करे, अर्थात पतित से पावन एवं पुजारी से पूज्य बनने का प्रयत्न करे, यत्न करे। परंतु आज हम देखते हैं कि मनुष्य मंदिर में जाकर कर श्री नारायण की महिमा करने के बाद अपने बारे में यही कहने से ढाढ़स अनुभव करता है कि हे नाथ, मैं नीच हूं, विकारी हूं, पतित हूं, अशांत हूं, आपका दास हूं। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। अब सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा कहते हैं कि हे वत्स, पहले आप ही अपने ऊपर यह कृपा करो कि निर्विकारी बनो। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य निर्विकारी कैसे बने, अथवा वह नर से श्री नारायण पद कैसे प्राप्त करे, उसकी दृष्टि और वृत्ति कैसे पवित्र हो, उसका जीवन कमल फूल के समान पूर्ण कलाओं से सहित प्रकाशवान कैसे बने। इसके लिए जरूरी है कि हमने सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक की सत्यनारायण की जो कथा इस पुस्तक के पृष्ठ 17 से 30 तक लिखी है अथवा सत्यनारायण की सच्ची कथा, यह कथा प्राय लुप्त, इस कथा द्वारा सर्व सुखों की प्राप्ति कैसे, नर से श्री नारायण बनने का व्रत, इन विषयों पर चर्चा का जो श्रवण हमने किया है उसकी पुनरावृत्ति, उसका पुनः स्मरण अपने मन में करता रहे, अर्थात उसके मन में यही चिंतन चलता रहे, मैं सत्ययुग में सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा धर्म वाला सूर्यवंशी देवता था, फिर त्रेता युग में मैं 14 कला दिव्य गुण संपन्न था और पूर्ण निर्विकारी था, द्वापर युग से ही मैं देह अभिमानी बना, पूज्य से पुजारी हुआ और निर्विकारी से विकारी बना, तब मेरी केवल 8 कलाएं थी, उनके क्षीण होते होते अब कलयुग के इस अंत में मैं विकारी बना। अब मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा को पुनः पावन और सर्वगुण संपन्न बनना है। अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो, कोई बात आप विस्तार से जानना चाहते हो, अथवा नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ सरलता से करना चाहते हो, अथवा पुरुषार्थ करने के तीव्र विचार आ रहे हो, तो आप ही के शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप ही के शहर में अवश्य आइए और अपना भाग्य प्राप्त कीजिए। आपको मेरा दिल से आमंत्रण है और शुभकामनाएं भी। ओम शांति।